तो कृतभूषण है, तो ऐसे आभूषण धारण करते थे, नेचुरल डेकोरेशन, वहां कोई प्लास्टिक कोई केमिकल वगैरह का सवाल नहीं था। जो निसर्ग में मिलता है उसे अपने आप को सुशोभित कर लो, मतलब किसी को सुंदर भी दिखना है तो भक्ति करे और प्रकृति के जो भी चीजें हैं उनसे अपने आप को सजाए धजाए तो बहुत काफी है। बड़े बड़े कॉस्मेटिक फैक्ट्रियों की कारखानों की कोई जरूरत नहीं है। आजकल ये करोड़ों रुपए का बिजनेस इंडस्ट्री बन गया है, लिपस्टिक और फिर नाना प्रकार के क्या क्या चीजें हैं बाल को काला करने के लिए, और नाना प्रकार की चीजें हैं आजकल। क्योंकि जितने ज्यादा कलयुग बढ़ते जाता है उतने ज्यादा लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं भगवान से वैसे वैसे प्राकृतिक जो उनका नेचुरल स्वाभाविक सौंदर्य है वो कम होते जा रहा है। इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा इन कॉस्मेटिक्स और इन चीजों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन अगर व्यक्ति निसर्ग के सानिध्य में रहे, भगवान की भक्ति करता रहे, तो स्वाभाविक तौर से उसका स्वास्थ्य उसका सौंदर्य बढ़ता रहेगा। और फिर जैसे जैसे अंदर जाते वो क्या करते, कृष्ण भगवान और बलराम दोनों नान ऋतुर नृत्य करते, युधुर झगड़ा करते, झगड़ा मतलब युद्ध करते मजाक में खेलकूद में, जगहो गाते गीत गाते। तो कल्पना कर सकते हैं वो दृश्य, कृष्ण बलराम ग्वाल बाल नृत्य करते हुए गाते गाते, कभी बीच बीच में दो ग्वाल बाल जो है वो कुश्ती करेंगे थोड़ा बहुत फिर आगे चलेंगे, ऐसे नृत्य जैसे छोटे बच्चे करते हैं जाते जाते। और फिर किस तरह से कृष्ण नृत्य करते थे इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, कभी कृष्ण और बलराम नृत्य करते और ग्वाल बाल देखते, कभी ग्वाल बाल नृत्य करते और कृष्ण देखते। कृष्णस्य नित्यतः केचिद् जगुः केचिद् अवादयन् वेणुपाणितलै श्रृंगै प्रशंसुर अथापरे। कृष्णस्य नित्यतः केचिद्, केचिज मतलब कभी कभी, कृष्ण नृत्य करना शुरू करते तो उस समय जगहो केचित अवादयन, तो जो ग्वाल बाल है वो क्या करने लग जाते, वो गाना शुरू कर देते कृष्ण को। कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और ग्वाल बाल गा रहे हैं, और गाने के साथ साथ अवादयन वाद्य बजा रहे हैं, संगीत के वाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। उनके पास क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्या वाद्य थे, वेणु, वो भी वेणु बजाते थे। केवल अकेले कृष्ण वेणु नहीं बजाते थे, ग्वाल बाल भी बजाते थे। सबके पास वेणु, गायों को चराने की छड़ी और रस्सी, ये सब चीजें उनके पास हुआ करती थी। जैसे आजकल लोग जाते हैं उनके पास ब्रीफ केस सूट केस ये वो सब रहता है ना, दफ्तर बिजनेस में जाने के लिए स्कूटर की चाबी मोबाइल आजकल के सब सामग्री होते हैं, लेकिन पहले वृंदावन की सामग्री क्या हुआ करते थे, ये सब चीजें। और फिर पाणी तलई ही, पाणी मतलब हाथ, तलई करताल, ताल करताल, कोई करताल बजाता कोई वेणु बजाता और कृष्ण भगवान नृत्य करते, और क्या करते साथ साथ प्रशंसुर अथा परे, प्रशंसा करते कृष्ण की, अरे कृष्ण बहुत सुंदर नाच रहे हो। कोई दूसरा बोलता अरे मेरे प्रिय मित्र तुम जैसा तो गंधर्व भी नहीं नाच सकते हैं, तो ऐसे कृष्ण की प्रशंसा करते। और किस तरह से प्रशंसा करते यह सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं, ताली ताली मार मार कर, वाह 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 कृष्ण बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और कृष्ण खुश हो रहे हैं अपने मित्रों की ताली सुनकर। गोप जाति प्रतिच्छन्न देवा गोपाल रूपिण इडीरे कृष्ण रामो च नटा इव नटम नृप। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी बताते हैं गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिण, देवा देवलोक के देवतागण वो यहां प्रकट हुए थे, प्रतिच्छन्ना, अपना वेश बदल के। कैसा वेश धारण किया उन्होंने? गोपाल रूपिणो, गोपालक, ग्वालों के समाज में गोप जाति प्रतिच्छन्ना, गोप जाति में, वृंदावन के गोप जाति में उन्होंने जन्म लिया और अपने आप को गोपाल के रूप में बना लिया, हालांकि वो देवलोक के देवता थे। आपको याद होगा कृष्ण लीला से कि जब सारे देवतागण ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर पे गए थे और पुरुष सूक्त प्रार्थना उन्होंने की थी, तो भगवान ने देवताओं को आदेश दिया था। भगवान ने देवताओं को चार आदेश दिए। पहली बात, भगवान ने कहा कि मैं अवतार लेने वाला हूं बहुत ही जल्दी, चिंता नहीं करो, लेकिन मेरा आदेश आपको यह है कि मेरे अवतीर्ण होने से पहले आपको अवतीर्ण होना चाहिए और सारे जगत भर में जहां भी यदुकुल है, यदुकुल के कुटुंबों में आपको जन्म लेना चाहिए। यह पहला आदेश उनको दिया। साथ साथ दूसरा आदेश उनको दिया, आपके पत्नियों को भी साथ साथ जन्म लेना होगा। ऐसे नहीं कि आप अकेले टूर में चले गए, नहीं, आपकी पत्नियां भी वहां आएंगी, वो भी गोपियां बनेंगी। आप गोप बनोगे आगे जाके और ये गोपियां बनेंगी। और तीसरा आदेश, जब तक मैं वहां रहूंगा तब तक आपको रहना होगा वहां पृथ्वी लोक पर। तीसरा आदेश। चौथा आदेश, और जब मैं रहूंगा और आप रहेंगे तो आप मेरी लीला में सहायता करेंगे। ये आदेश दिए थे भगवान ने देवताओं को। तो भगवान के प्रकट होने के पहले से ही सारे देवी देवतागण एक एक करके अलग 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 यदुकुल के निवास कुटुंबों में जन्म लेने लगे, तैयारी करने लगे भगवान के लिए, भगवान के आने के लिए तैयारी करने लगे। जैसे कि कोई राजा, कोई मंत्री किसी दूसरे जगह जाता है तो पहले उनके असिस्टेंट, उनके सेक्रेटरी, उनके सैनिक जो है आगे चल के पहले तैयारी करते हैं, सब ठीक ठाक है ना, व्यवस्था ठीक है ना, तो उनके आने की तैयारी पहले से करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के इस धरातल पे आने के पहले उनके भक्त देवतागण, उन्होंने आके सारी तैयारी की, सेट किया सारा ग्राउंड उनके लिए। और इस प्रकार से देवतागण प्रकट हुए, फिर कृष्ण भगवान आए। तो ये सारे जो ब्रजवासी हैं ये कौन हैं? ये तीन प्रकार के हैं लोग ब्रजवासियों में से, और जो भी वृंदावन में कृष्ण की लीला में सहायता करने लगे। आप बता सकते हैं कि ब्रजवासी कौन है असल में? ये तीन प्रकार के लोग कौन हैं? हाँ, एक श्रेणी तो ये है जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत तपस्या की थी, भगवान का संग प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उनके हृदय में थी, बहुत भक्ति की थी उन्होंने, और इसलिए उनको भगवान ने उनके भक्ति का, उनके सेवा का फल दिया और वो यहां वृंदावन में जन्म लिए, उनकी लीला में शामिल हो सके, ऋषि मुनि और जो भक्त थे भगवान के। ये एक श्रेणी। दूसरी श्रेणी, देव देवता, देवी देवता, वो प्रकट हुए भगवान के आदेश के अनुसार, वो भी तो भगवान के भक्त हैं। और तीसरी श्रेणी, गोलोक धाम से, भगवान के धाम से नीचे आए, प्रकट हुए। जैसे भगवान, जैसे कोई राजा भी आता है तो साथ साथ अपने मंत्रियों को लेकर आता है, कोई लोग पहले जाते हैं और कोई लोग उनके साथ में आते हैं, जो उनके बहुत निकट के होते हैं वो उनके साथ में ही आते हैं, और जो उनके सेवक होते हैं लेकिन इतने निकट नहीं, वो पहले जाके तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के धाम से जो उनके नित्य पार्षद हैं वो भी उनके संग में आए, गोप गोपियां। तो ये हैं ब्रजवासी। तो यह सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं उन ग्वाल बालों की, जिन्होंने कि कृष्ण भगवान की लीला में साथ देने के लिए देवलोक से नीचे आए थे। और आगे बताते हैं, इडीरे कृष्ण राम उच, इडीरे मतलब उनका नमन कर रहे थे, उनकी उपासना कर रहे थे, उनके भक्त ही हैं, लेकिन किस तरह से उपासना कर रहे थे? इस बार जब वो ये अवतार लिए थे तो उनकी उपासना करने की पद्धति पहले की तुलना से अलग थी। जब अपने वो देव रूप में थे तो भगवान की उपासना कैसे करते थे? पुरुष सूक्त प्रार्थना, ऐश्वर्यशाली प्रार्थना, वैकुंठ की प्रार्थना। लेकिन जब वो ग्वाल बाल के रूप में आए तो इस समय कृष्ण की पूजा कैसे करते थे? उनकी प्रशंसा करके। यहां खेल क्रीड़ा में इडी रे कृष्ण रामौच नट इव नटम नृप। जैसे एक नट या एक एक्टर, अभिनेता या नृत्य करने वाला डांसर, एक नट दूसरे नट को कैसे प्रशंसा करता है, उसको प्रोत्साहन देता है, भाई बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये सारे ग्वाल बाल कृष्ण को प्रोत्साहित कर रहे थे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कृष्ण, तुम जैसा तो कोई नहीं है ऐसे नृत्य करने वाला। इस प्रकार से कृष्ण ये प्रशंसा सुनकर बहुत खुश होते थे। कृष्ण भगवान वृंदावन के निवासियों के शुद्ध प्रेम को बहुत चाहते हैं। चाहे वृंदावन के निवासी उनको डांटे या उनको प्रशंसा करें, उनको ये वृंदावन के निवासियों की मधुर बातें या कठोर बातें इतने अच्छे लगते हैं कि वेदों के मंत्रों का उच्चारण और देवताओं के पुरुष सूक्त प्रार्थना भी इतने अच्छे नहीं लगते उनको, क्योंकि इस वृंदावन के डांट में या प्रशंसा में वो एक निकटता है, वो एक प्रेम की तीव्रता है, एक माधुरी है, मिठास है, जो कि केवल वेदों के मंत्र पाठ में नहीं है। और फिर आगे जैसे जैसे आगे आगे वन के भीतर भीतर चलते जाते तो नाना प्रकार के क्रीड़ा करते। तो सुखदेव गोस्वामी यह वर्णन करते हैं कि पर ब्रह्म श्री कृष्ण बलराम के सहित ग्वाल बालों के साथ कैसे क्रीड़ा करते थे। भ्रमणे लंघने क्षेपे आस्फोटन विकर्षणे चिक्रीडतो नियुद्धेन काकपक्षत्थरौ क्वचित। भ्रमणेर, घूमना, गोल 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 घूमते थे। कभी कभी भक्त लोग कीर्तन करते हुए ऐसे भी नृत्य कर, गोल 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 नृत्य करते हैं, घूमते हैं। तो कई गोपगण जैसे सब चल रहे हैं, अभी मन में आप कल्पना कीजिए, हजारों गाय, हजारों ग्वाल बाल कृष्ण बलराम से चले जा रहे हैं वन में, अंदर 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 चलते चलते को सजा रहे हैं, धजा रहे हैं, कोई नृत्य कभी नाच रहे, नाचते नाचते जा रहे हैं, चलते चलते कृष्ण नाचते नाचते जा रहे हैं, ग्वाल बाल प्रशंसा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कभी कुश्ती कर रहे हैं चलते चलते, और बीच बीच में कोई ग्वाल बाल जो है घूमते हैं एक जगह खड़े होकर या चलते चलते बहुत जल्दी से गोल घूमते हैं अपने आप को कोई मशीन कोई यंत्र समझकर, फिर जब सर चकरा जाता है तो ऐसे ऐसे अपने आप को संभाल लेते हैं। तो ये भी ऐसे करते थे सारे ग्वाल बाल, कभी कृष्ण बलराम भी ऐसे करते थे भंवरे की तरह, वो क्या क्या कहते वो हा? भौरक की तरह वो ऐसे करते थे। लंघने फिर कूदते थे, ऊपर कूदना, कौन सबसे ज्यादा कूद सकता है, कंपटीशन स्पर्धा होती थी कि मैं तुमसे ज्यादा ऊपर कूद सकता हूं, चलते चलते ये सब हो रहा है। फिर क्षेपैर फेंकना, क्या फेंकते थे, कभी कभी कोई पत्थर ले लिया, रास्ते में कोई फल मिल लिया जो पड़ा हुआ है रास्ते में, कौन ज्यादा दूर फेंक सकता है, ऐसा करते थे। या कभी कभी एक दूसरे को पकड़ के फेंकते थे ऐसे सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं, एक को पकड़ लिया दूसरे के ऊपर धक्का मार के उसको फेंक दिया, तो ऐसे करते थे साधारण बच्चों की तरह। आस्फोटन, पीठ पे अचानक कोई बच्चा जा रहा उसके पीठ पे जाके थपथपा दिया, उसके बगल में जाके थपथपा दिया, ये सब उनकी क्रीड़ा चलती रहती थी। विकर्षण ही मतलब उनको खींच लेना, हाथ पकड़ा उसको खींच के ले गए दूसरे जगह, और तीसरे बाल ने उद्देश्य और किसी को पकड़ा और खींच लिया। तो इस प्रकार से ये सब लीला करते रहते थे। नियुद्धेन, कभी कभी युद्ध करते थे, किस तरह के युद्ध, कभी चले चलो तुम्हारे ये रखो यहां पे, किसकी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति बाहों में देखते हैं, पर यूं नीचे करने का देखते थे, या कभी कभी कुश्ती भी कर लेते थे जमीन के ऊपर,
तो ऐसे प्रकार के युद्ध किया करते थे। आचार्यों ने ज्यादा टीका दी, इसका विस्तृत रूप, विस्तारित जो व्याख्या है वो दी है इस प्रकार से। सुखदेव गोस्वामी केवल नियुद्ध कहते, युद्ध करते थे, लेकिन किस प्रकार से युद्ध करते थे वो आचार्यों ने इस तरह से समझाया है। चिक्रीडतुर, तो ऐसे ये लोग खेलते थे। काक पक्ष धरव क्वचित, काक पक्ष मतलब जो बाल यहां आता है, अलकाएं जो आती हैं, एक ग्वाल बाल दूसरे का बाल पकड़ के क्यों खींच के पीछे आ जाता है, फिर दूसरा को आके उसका बाल खींचता। तो इस प्रकार से जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ठीक उस तरह से कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेला करते थे। और आगे फिर पहले कृष्ण नृत्य करके दूसरे ग्वाल बाल उनकी प्रशंसा करते थे। अब कभी कभी क्या होता था कि दूसरे ग्वाल बाल नृत्य कर रहे हैं और कृष्ण उनकी प्रशंसा कर रहे हैं बलराम के साथ। क्वचिन् नृत्यत्सुचान्येषु गायको वादको स्वयं शशंसतुर् महाराज साधु साध्वितिवादिनो। क्वचिन् नृत्यत्सु च अन्येषु, अन्येषु मतलब अन्य ग्वाल बाल, क्वचित कभी कभी, नृत्यत्सु वो नृत्य करते थे, गायको वादको स्वयं, फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, गायतो गाते थे और वाद्य बजाते थे, और साथ साथ में शशंसतुर महाराज उनकी प्रशंसा करते थे। अरे सुदामा तुम तो बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हो, अरे श्रीदामा तुम्हारे नृत्य का तो कोई जवाब नहीं। तो कृष्ण भगवान हरे ग्वाल बाल की प्रशंसा करते थे, गीत गाते थे, वाद्य बजाते थे। और फिर आगे जैसे जैसे चलते 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 ये सारी घटनाएं चलते चलते हो रही हैं, कल्पना कीजिए जैसे जैसे जंगल में भीतर भीतर जा रहे हैं, फिर और खेल क्रीड़ा करते, और इनका वर्णन यहां पर सुखदेव गोस्वामी आगे दे रहे हैं। क्वचित बिल्वै क्वचित कुंभै क्वचामालक मुष्टिभिः अस्पृश्य नेत्र बंधाद्यै क्वचिन् मृगखगेहया। क्वचित बिल्वै, कभी कभी बिल्वा, बिल्वा फूल होता है, बिल्वा ये शिवजी को बहुत प्रिय है। क्वचित कुंभै, कुंभ ये औरत फल होता है। क्वच आमलक मुष्टि भी, आमला के, आमला आपने सुना ना, आमला का, इसके फल छोटे छोटे होते हैं जंगली आमले, तो वो मुट्ठी में, मुष्टि भी मुट्ठी में रखे, या कभी बड़े बड़े बिल्वा के फल होते थे या कुंभ के फल होते थे वो लेते थे, और क्या करते थे इनसे, कोई एक ग्वाल बाल जो है ऊपर फेंकता और दूसरा ग्वाल बाल और एक फल लेके उस फल को मारने के लिए चेष्टा करता, या कभी कभी हल्के से एक दूसरे के ऊपर फेंकते, या कभी कभी ये देखते कि ये फल हम कितना दूर फेंक सकते हैं, कौन ज्यादा से ज्यादा दूर फेंक सकता है। और ये जो भी क्रीड़ाएं करते थे इसमें हार और जीत का फैसला होता था, कौन जीत गया है, और जो हार गया फिर उसको कुछ देना पड़ता, कभी कभी अपनी बांसुरी दे देते या कुछ ऐसे जुगाड़ के सबक समझ लीजिए कि जैसे हम जीत गए तो हमें ये दोगे, तुम इतना दोगे। तो ये दिव्य खेल है भगवान के। और फिर अस्पृश्य, अस्पृश्य मतलब मुझे छूके तो देखो, तो एक कहता था छुओ मुझे, फिर भाग जाता, दूसरा उसका पीछा करता था, छूने का प्रयास करता था, अगर छू सकता तो वो जीत जाता, उसको कोई भेंट मिलता पहले लड़के से। नेत्र बंधा, एक ग्वाल बाल के पीछे दूसरा ग्वाल बाल आता, आंखों, उसकी आंखों के ऊपर उसका हाथ डालता, जैसे यहां पे बच्चे करते हैं, और केवल उसके हाथों को स्पर्श करके उसे पहचानना पड़ता है कि यह कौन है, इसका नाम क्या है, किसने किया है। और आद्य ही मतलब आदि, ऐसे कई सारे खेल आचार्य बताते हैं कि आदि कौन से और खेल खेलते। कभी कभी जो छोटे छोटे नदियां होते तो उनके ऊपर से ब्रिज बनाते, किसी कोई पेड़ गिरा हुआ हो या कोई लकड़ी है, कुछ भी हो, जंगल के कोई वस्तु बना पकड़ के वो ब्रिज बना लेते। कभी कभी एक दूसरे का पीछा करते, और कभी कभी वो चोरी भी करते। किस तरह की चोरी? जब दोपहर के समय कृष्ण भगवान थोड़ा विश्राम करते तो ग्वाल बाल मौके का फायदा उठाते। उधर से छोटी छोटी गोपियां वो दूध मक्खन इत्यादि लेकर अपने मटकों पर लेकर गीत गाते हुए जाती, और ये ग्वाल बाल वहां जाते और उनको पूछते कितने में बेच रही हो, तो बोलते नहीं इतना कीमत है, तो उनके साथ बड़ा बार्गेनिंग करते, नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा ये है, फिर आखिर में क्या है वो चोरी करके भाग जाते उधर से। तो ये लीला भी हुआ करती थी ग्वाल बाल जंगल में, गोपियों को पकड़ के उनका मकान इत्यादि जो भी है वो चोरी करके भाग जाते थे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्रों की लीला चलती रही। क्वचिन मृग खग इहाया, कभी पशुओं की और पक्षियों की नकल करते और उनकी तरह उड़ते, उनकी तरह बोलते, उनकी तरह झगड़ा करते, नकल में नकल करते उनकी। और थोड़े खेल हैं जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। देखिए इन खेलों को ध्यान से हमें क्यों सुनना चाहिए, ये कोई साधारण बच्चों का खेल नहीं है। कौन खेल रहे हैं? भगवान, जिनकी उपासना इतने सारे योगी बैठ के करते हैं, करोड़ लाखों साल तपस्या करते हैं उनकी प्राप्ति के लिए, और वो व्यक्ति आज आके साधारण बच्चे की तरह खेल रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। क्वचित विविधेर उपहासकैः कदाचित् चन्दुलिकाय करहिचिन्नृपचेष्टया। क्वचिच्च, कभी कभी, दर्दुर प्लावैर, दर्दुर मतलब क्या बोलते, मेंढक, प्लावैर उसकी जैसे आवाज करते हैं, क्योंकि मेंढक भी हुआ करते थे ना वो नदियों में इधर उधर तालाबों में, तो मेंढकों को देखकर मेंढकों का पोज धारण करते, मेंढकों की तरह बोलते और उसकी नकल करते, मेंढक के सामने बैठ के मेंढक की आंखों से आंख देके मेंढक की आवाज करते हैं, फिर मेंढक की आवाज जोर से कभी करते हैं, कभी कोई खरगोश आ गया तो खरगोश के सामने बैठ के खरगोश की तरह बोलना, उसकी तरह से हाथ ऊपर करना नीचे करना, तो खरगोश बेचारे मेंढक डर के भाग जाते थे। विविधेर उपहास कहे, विविध तरह के जोक्स उपहास एक दूसरे का करते। कदाचित संदोलिकया, संदोलिकया मतलब झूले, झूले के ऊपर झूलते, कभी पेड़ की शाखा को झूले बनाते और झूलते रहते। वो दृश्य आपने देखे होंगे, हमारे कृष्ण बुक में भी है, तो प्रवचन के बाद में ये सारे दृश्य आपको दिखाएंगे पिक्चर। करहिचिन नृप चेष्टया, नृप मतलब राजा, तो राजा की नकल करते, कोई गोप कहता मैं राजा हूं, अभी तुम मेरी प्रजा हो, और कभी कभी ये राजा की लीला कैसे करते, कर वसूल करते, क्योंकि राजा का एक काम होता है ना कर वसूल करना। तो वहां ब्रज में कई ऐसे जगह होती थी नदियों के पास, जहां नदी पार करने के लिए घाट होते थे और वहां पर कर देना पड़ता था, तो ये ग्वाल बाल वहां जाते, खड़े हो जाते, उनको मालूम था कि अमुक गोपियां आ रही हैं, वहां जाके खड़े हो जाते, वो मक्खन वगैरह लेकर कहीं बेचने के लिए जा रहे थे, तो उनसे जबरदस्ती कर वसूल करते कि हम राजा हैं इधर के, यहां से नहीं जा सकते जब तक ये हमें कर नहीं दोगे। तो इस तरह के खेल खेला करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी इन खेलों का सारांश भी करते हैं। एवं तौ लोक सिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वने नद्यद्रि द्रोण कुंजेषु काननेषु सरसु च। एवं, इस तरह, तौ दोनों कृष्ण और बलराम लोक सिद्धाभिः क्रीडाभिः ऐसे क्रीडा खेल रहे थे चेरतुर, जो कि लोक सिद्धाभिः, जो कि मनुष्य समाज में प्रचलित हैं, जो कि मनुष्य समाज में प्रसिद्ध हैं। ये जो भी खेल हैं आप सबने देखा है ना, बच्चे खेलते हैं, शायद हम सब ने बचपन में ऐसे खेल खेले होंगे, तो मनुष्य समाज में ये सारे खेल बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे खेल भगवान ने खेले, लोक सिद्धाभिः क्रीडाभिः चेरतुर, कहां खेले? वने, वन के भीतर, वनों के भीतर, नदियों के अंदर, अद्री मतलब पर्वत, द्रोणी मतलब जो वैली होते हैं पर्वत से नीचे उतरने के बाद, कुंजों में, वनों में, काननों में, सरहसु तालाबों में, घूमते घूमते गाय चर रहे हैं अपने अपने जगह, और ये ग्वाल बाल जंगल के भीतर 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 जा रहे हैं, कभी पहाड़ में, कभी कुंजों में, कभी तालाबों में, और ये सारे क्रीड़ाएं लीलाएं ये सब चल रहा है। इस तरह से उनका सारा दिन जाता था। फिर बीच में कब थक गए तो बैठ के विश्राम करते, फिर थोड़ा भोजन ग्रहण करते, ऐसे आनंद से भरा हुआ उनका दिन रहता। उनको पता नहीं चलता कि कैसे शाम हो गई और वापस जाना है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अब ये साले खेल क्रीड़ा छोड़कर हमें वापस वृंदावन जाना होगा। लेकिन फिर भी शाम हो जाती, अंधकार होने के पहले उनको वापस जाना था, गायों को वापस ले जाना था, दोहन का समय भी होना था। तो इस तरह से दिनचर्या कृष्ण भगवान की रहती थी। उनका टाइम टेबल, फिक्स टाइम टेबल हुआ करता था, और उसमें हमेशा कई असुरों को मारना तो ये दैनिक कार्य था, ये तो होना ही था, और इस बार भी हुआ। तो इस बार कौन से असुर का वध किया भगवान ने, कौन सा असुर आ गया उनके बीच, अब देखिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। किसी को मालूम है कौन सा असुर? प्रलंबासुर। प्रलंबासुर नाम का असुर आ गया, और किस तरह से भगवान ने बलराम के द्वारा उनका वध किया वो अभी सुनते हैं।
पशुंश्चारयतोर्गोपै तद्वने रामकृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्बो गाद् असुरस्तज्जिहीर्षया। पशुंश्चारयतोर्गोपै तद्वने, जब गोपगण ग्वाल बाल अपने पशुओं को गायों को चरा रहे थे वनों में राम कृष्ण के साथ, बलराम और कृष्ण के साथ, तो आगाद एक आ गया। कौन आया? गोप रूपी असुरः, एक असुर आया, लेकिन उसने ग्वाल बाल का रूप धारण किया था, बिल्कुल ग्वाल बाल की तरह दिख रहा था। प्रलम्ब, उसका नाम था प्रलम्ब, क्योंकि असुर था उसका नाम बन गया प्रलम्बासुर। तज जिहीर्षया, जिहीर्षया मतलब किडनैप, अपहरण। वो किस लिए आया था वहां? कृष्ण भगवान का अपहरण करने के लिए आया था। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ये असुरों की बहुत शक्ति होती थी, नाना प्रकार के तंत्र वगैरह वो सब जानते हैं, तांत्रिक भी हुआ करते थे ये लोग, इसलिए अपना रूप बदल सकते थे। बहुत अद्भुत शक्ति उनकी थी, योग सिद्धियां उनके पास हुआ करती थी। जैसे पूतना, वो भी एक खेचरी थी, खेचरी चुड़ैल, खेचरी, खे मतलब आकाश, चरी मतलब चरण करने वाली, घूमने वाली। और आज तक भी गांव में आप जाएंगे तो खेचरियों की, चुड़ैलों की, विच जो अंग्रेजी में बोलते हैं, उनकी कथाएं आती हैं। और वो कैसे चलते हैं, कभी जो लंबा झाड़ू होता है, लकड़ी होता है, उसके ऊपर बैठ के आकाश में चलती है। आपने बचपन में भी ऐसे सब पढ़ा होगा कॉमिक्स वगैरह चित्रों में, खेचरी उसके ऊपर। पूतना भी ऐसी थी, खेचरी। तो तांत्रिक हुआ करते थे ये सब असुर, बहुत शक्तियां उनकी होती थी। जितने भी सारे असुर आए वृंदावन में जो कंस के दोस्त थे, वो इसी तरह के थे सब, तांत्रिक और वगैरह। तो इस प्रकार से प्रलम्बासुर की इच्छा थी कि मैं कृष्ण को अपहरण करूं। तो उसने एक ग्वाल बाल का वेश धारण किया जो कि उस दिन नहीं आया था वन में, किसी वजह से उसकी मां ने उसको घर में रख दिया था, कोई काम हुए होंगे। तो देखिए कितने बुद्धिमान थे, ठीक उस बच्चे का रूप प्रलम्बासुर ने धारण कर दिया। तो बाकी सारे बच्चों ने सोचा कि ये तो वो बच्चा है, हमारा मित्र है, इसलिए किसी को संशय नहीं आया। लेकिन जब वो बच्चा कृष्ण के पास आया तो क्या हुआ? तम विद्वान अपि दाशार्हो भगवान सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सख्यम वधम तस्य विचिन्तयन्। तम विद्वान अपि दाशार्हो, दशरह के वंश में आने वाले कृष्ण, इसलिए उनको दाशार्ह कहते हैं। तम विद्वान, उनको तुरंत पता चल गया कृष्ण भगवान को कि ये जो बच्चा है ग्वाल बाल के रूप में आया है, ये मेरा मित्र नहीं है, लेकिन ये असुर है जिसका नाम है प्रलम्ब।
किस तरह से पता चल गया कृष्ण को? भगवान सर्वदर्शन, क्योंकि कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में होते हुए भी भगवान है। सर्वदर्शन सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, इसलिए उनको तुरंत पता चल गया कि ये एक असुर है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? अन्वमोदत तत् सख्यम, एक सखा एक मित्र के रूप में उसको स्वागत किया और कहने लगा कि अरे मेरे प्रिय मित्र, ये तो बहुत अच्छा हो कि तुम हम सब हमारे सब बीच में आए खेल कूद करने के लिए, आओ आओ आ जाओ हम खेलेंगे। तो बाहरी रूप से भगवान ने उसका स्वागत किया, जानते थे अच्छी तरह से कौन है। बाहरी रूप से स्वागत करके मन ही मन में क्या सोच रहे थे? वधम तस्य विचिन्तयम्। बाहर से स्वागत किया लेकिन मन में सोच रहे हैं इसका वध अब कैसे किया जाए, प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि कैसे इसको सबक सिखाना चाहिए, किस तरह से उसका उद्धार करना चाहिए। तो भगवान ने फिर सोचा कि चलो अभी कुछ करना चाहिए इसके लिए। तत्रोपाहूय गोपालान कृष्ण प्राह विहारविद, हे गोपा विहरिष्यामो द्वंद्वी भूय यथायथम। तत्र उपाहूय, उपाहूय मतलब बुलाया, तो कृष्ण भगवान ने बुलाया, किसको बुलाया? गोपालान कृष्ण प्राह, कृष्ण ने बुलाया सबको, सारे गोपालों को बुलाया, क्योंकि वो विहारवित हैं, वो खेल क्रीड़ा करने के इच्छुक हैं, लीला करने के इच्छुक हैं। तो किस इच्छा से उन्होंने बुलाया? उनको कुछ खेल खेलना था। बुलाने लगे, हे गोपा विहरिष्याम, हे गोपा, हे से गोपगण, हे श्रीदामा, हे सुबल, हे सुदा, हे मधुमंगल स्तोक कृष्ण, आओ 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 जल्दी आओ, सबको बुलाया। विहरिष्याम, हमें खेल करना है, मुझे खेलना है, चलो हम खेलते हैं, खेलते हैं। तो जब सारे ग्वाल बालों ने देखा कि कृष्ण बुला रहे हैं तो आए, अरे कृष्ण क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, क्या खेल खेलना है? तो कृष्ण ने कहा, अभी चलो हम नृत्य बंद कर देते हैं, हम कोई खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलना है? द्वंद्वी भूय यथायथम, सबसे पहले अपने आप को दो गठ दो दल में कर दो। यथायथम मतलब समान शक्ति के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें सारे शक्तिशाली लोग आए कमजोर लोग इसमें आए, नहीं, यथायथम समान शक्ति से दोनों दल बनने चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने आदेश दिया और ग्वाल बाल बड़े खुशी से दो बल उन्होंने दो गठ उन्होंने बना दिए। और दो गठ कौन से हो गए? दो दल, एक कृष्ण का एक बलराम का, क्योंकि कृष्ण का सामना कौन कर सकता है? केवल बलराम ही है जो उनके बराबर का है। तो दोनों कृष्ण और बलराम दो दल के नेता बन गए, लीडर बन गए, और थोड़े ग्वाल बाल बलराम के साथ गए, थोड़े ग्वाल बाल कृष्ण के साथ गए। और फिर जाकर क्या हो गया, किस तरह के खेल उन्होंने खेला, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। आचरूर विविध क्रीड़ा बाह्य वाहक लक्षण, यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः। विविध तरह के क्रीड़ा उन्होंने किए, आचेरुर विविध क्रीड़ा, और इन सारे क्रीड़ाओं में एक लक्षण था और वो था वाह्य वाहक। कोई एक व्यक्ति वाहन बनता और दूसरा वाह्य उसके कंधे पे चढ़ जाता। तो कौन वाहन बनता और कौन वाह्य बनता, यहां बताते हैं। यत्र आरोहन्ति जेतारो, जो वाहक बन जाता, तो मतलब खेल करते करते अगर कोई लड़का जीत जाता है तो दूसरे के कंधे पे चढ़ जाता था, उसको उसको उठा के ले जाना पड़ता। तो कौन सी क्रीड़ा खेलते? सनातन गोस्वामी बताते हैं, हरिणा क्रीडनम, जिसमें सारे ग्वाल बालों के दो 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 के ग्रुप बनाए जाते हैं, एक दल का ये लड़का एक लड़का दूसरे दल का और एक लड़का, ये दो अपने आप में कुछ कीड़ा करते थे, और एक ऐसे जोड़ी हो जाती थी दोनों दलों से, और उनमें से जो हार जाता उसको दूसरे को उठाना पड़ता और चलना पड़ता उनको उठा उठा के, और ऊपर बैठे वाला जो लड़का आराम से बैठता शान से, जैसे मानो कि वो कोई हाथी पे बैठा राजा, ऐसे बैठ के चलते थे। तो ये इनकी क्रीड़ा होती थी। तो जब ऐसे चलते चलते गए तो एक वन में पहुंचे जिसका नाम है भांडीर वन। आगे चलते चलते वो भांडीर वन में पहुंचे। वृंदावन में कितने वन हैं? ब्रज में 12 तो प्रमुख वन है, उपवन कितने हैं? 108, और वन कितने हैं न जाने कितने हैं, छोटे छोटे वन तो कितने भी हैं, लेकिन उपवन 108 और प्रमुख वन 12 है, द्वादश कानन। और इन द्वादश काननों में से यमुना जी के पश्चिम ओर में कितने हैं और पूरब ओर में कितने हैं? पश्चिम में 7, पूरब में 5। तो एक वन है जिसका नाम है भांडीर वन, वो यमुना जी के पूरब की ओर में है। तो चलते चलते ऐसी क्रीड़ा करते करते एक दूसरे को उठाते उठाते कंधे के ऊपर ये सारे ग्वाल बाल अपने गौओं के संग पहुंच गए भांडीर वन। भांडीर वन में एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसको भांडीर वट कहते हैं, और शास्त्रों में बताया जाता है कि जो ये भांडीर वट का दर्शन करेगा, इस वट वृक्ष का, उसको पुनः किसी गर्भ में आना नहीं होगा। मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाता है, किसी गर्भ में प्रवेश नहीं करना, मतलब जन्म नहीं लेना फिर से। तो भांडीर वन बहुत पावन स्थान है, और यहां का जो भांडीर वट है, भांडीर वृक्ष है, इसकी व्याख्या श्री हरिवंश में की गई है। हरिवंश ये भी एक शास्त्र है। वृक्षों में से सर्वश्रेष्ठ है ये, और इसकी कई दीर्घ शाखाएं हैं, और इनके पत्ते बहुत घने हैं, पत्तों से, फलों से, फूलों से भरा हुआ है, और ऐसे लगता है कि ये एक बड़ा पहाड़ है जो कि आधे आकाश को ढक रहा है। नाना प्रकार के सुंदर पक्षी जिनके नीले रंग के पंख हैं वो वहां पर निवास करते हैं, और अपने घने पत्तों और फूलों से और फलों से जब वो सुशोभित होता था ये वृक्ष, तो ऐसे लगता था कि मानो ये कोई एक बड़ा बादल है जो कि इंद्रधनुष से, रेनबो से सुशोभित है, या तो फिर एक ऐसा बड़ा घर जिसमें नाना प्रकार की लताएं और फूल हैं, और उसके जड़ें बहुत नीचे तक, दूर दूर तक जाती थी, और वृक्ष बहुत ऊंचा था, और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो उसने बादल को ही अपने ऊपर धारण कर दिया है। और इतना विशाल था इसलिए वो सारे ब्रजवासियों को वर्षा से और धूप से आश्रय देता था। तो ये है भांडीर वट जो कि एक महान पहाड़ की तरह था। तो यहां पर पहुंचते पहुंचते किस तरह पहुंचे, कौन किसको कंधे पर धारण किए हुए था, यह सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। वहन्तो वाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम् भांडीरकम् नाम वटम् जग्मुः कृष्ण पुरोगमः। वहन्तो वाह्यमानाश्च, एक ग्वाल बाल दूसरे को कंधे पे धारण करके चल रहे थे। चार यंतश्च गोधनम्, साथ साथ गाय अपना काम कर रहे थे, गाय चर रहे थे, घास खाते 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 चल रहे थे आगे। भांडीरकम नाम वटम जगमोह कृष्ण पुरोगमः, इस प्रकार से भांडीरक नाम के वट वृक्ष के पास ये आए। जगमोह कृष्ण पुरोगमः, कृष्ण को आगे रखे रखे सारे ग्वाल बाल पीछे चले और भांडीर वट पहुंचे।
और उस समय दो दल तो बन गए थे, बलराम का दल जीत गया, कृष्ण का दल हार गया। तो बलराम के दल में कौन थे? श्री दामा, वृषभ, ऐसे नाम के गोपाल थे। तो वो तो जीत गए थे, तो वो दूसरों के कंधे पे बैठे हुए थे, बलराम भी दूसरे के कंधे पे बैठे हुए थे। तो कौन किसके कंधे पे बैठा हुआ था? वाह कृष्णो भगवान श्री दामानां पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। वाह कृष्णो भगवान, भगवान कृष्ण ने अपने कंधे पे धारण किया, क्योंकि कृष्ण हार गए थे, तो कृष्ण ने धारण किया अपने कंधों पर किसको? श्री दामां पराजितः, क्योंकि वो हार गए थे तो श्री दामा नाम के गोपाल को उन्होंने अपने कंधे पे धारण कर दिया। तो देखिए, वैसे अगर साधारण तौर से मर्यादा की दृष्टि से देखा जाए तो हमें कृष्ण के चरण कमलों में रहना चाहिए, कृष्ण के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन यह हम क्या देख रहे हैं? श्री दामा गोपाल, श्री दामा ग्वाल बाल कृष्ण के ऊपर नहीं, कृष्ण के कंधे पे बैठा है। चलो 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 घोड़ा चला रहे, चलो चलो घोड़े चलो घड़ो, और कृष्ण भगवान खुशी से ले जा रहे हैं श्री दामा को, पर ब्रह्म भगवान। ये है भगवान की लीलाएं। पैर भी अवश्य श्री दामा के लग रहे होंगे कृष्ण को, और कृष्ण शायद पैर पकड़े भी थे श्री दामा के, नहीं तो बैलेंस कैसे होता? कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में कि ग्वाल बालों की भावना क्या है। ग्वाल बाल कृष्ण को बोल रहे हैं, तुम्ही कौन बड़े लोग, तुम्ही आमी सम, अरे तुम कौन से बड़े आदमी हो, तुम हम तो बराबर के हैं, अरे तुमने किसका वध किया होगा, वो कोई बड़ा असुर के, हम भी थोड़े कम है क्या, आने दो दूसरा असुर, हम भी देखते हैं। लेकिन जब असुर आ जाता था तो क्या होता था? हे कृष्ण महाभागा आओ आओ रक्षण करो, कृष्ण बलराम आओ आओ रक्षण करो। तो इस प्रकार से इनका संबंध था, इतना घनिष्ठ प्रेम, सख्य प्रेम। पौगंड अवस्था में जैसे कि पहले वर्णन किया, कृष्ण भगवान ने सख्य रस का आस्वादन किया। फिर वृषभम भद्रसेनस्तु, भद्रसेन कृष्ण के पार्टी में था और वृषभ बलराम के, तो भद्रसेन नाम के गोपाल ने वृषभ को अपने कंधों पर धारण किया। प्रलंबो रोहिणी सुतम, बलराम जीत गए थे तो बलराम कंधे पे बैठे थे, किसके कंधे पे? प्रलंबासुर, प्रलंबासुर ने बलराम को अपने कंधे पे बिठा लिया। तो प्रश्न ये आ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण हारे कैसे? क्या संभव है सबसे शक्तिमान, वो तो सारे शक्तियों के उद्गम है, स्रोत हैं, तो भले वो कैसे हार गए? तो आचार्य समझाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण एक ग्वाल बाल की लीला कर रहे हैं, तो ग्वाल बाल के भाव में थे वो, और इसलिए ग्वाल बाल के भाव में कभी एक वो ग्वाल बाल एक छोटे बच्चे का जो भाव होता है, कभी जीतना खेलना, जैसे चंचल स्वभाव, वो उनका था। तो साधारण ग्वाल बाल की तरह वो कीड़ा कर रहे थे। और कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि अगर छोटा बच्चा होता है, पिता बच्चे के साथ कुश्ती करता है ऐसा होता है कि नहीं? जब छोटे बच्चे, बड़े होकर नहीं है, बड़े होकर होगा तो बहुत गंभीर मामला हो जाएगा, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो पिता आनंद लेता है बच्चे के साथ कुश्ती करने में, नाटक करता है, वो बच्चा उसके ऊपर चढ़ता है और पिता भी ओ, ओ, ओ करके बहुत आवाज करता है, अरे वाह कितने शक्तिशाली हो गए, बहुत मजबूत हो गए हो, अरे भाई इतना मत तो हमको दर्द करता है, पिता को आनंद आता है। और फिर बच्चा को धमकी देगा, अगर दम है तो आ जाओ, बोलो नहीं 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 हार गया हार गया, और फिर बच्चा पिता के ऊपर बैठ के गला दबाएगा, मैं जीत गया, बोलो हाँ हाँ तुम जीत गए। तो वास्तव में क्या पिता हार गया, बच्चा जीत गया? नहीं, पिता की शक्ति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पिता आनंद लेते हैं इस तरह से बच्चे के सामने हारने में। तो ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भगवान आनंद लेते हैं हारने में, अपने भक्तों से क्रीड़ा करते करते। तो भगवान जिससे कि सब कोई डरता है, सारे भीषेति सूरयः, वा जब सारे जो सूर्य देव हैं वो भी भयभीत होते हैं, उनके भय से वो अग्नि और प्रकाश देते हैं। भीषो देति सूर्यः अग्निश्चंद्रश्च, अग्नि और चंद्र भी अपना अपना प्रकाश उष्णता देते हैं भगवान के डर से। मृत्यु धावति पंचमः, मृत्यु सबका पीछा कर रही है कृष्ण के डर से। तो जिनके डर से अनंत कोटि ब्रह्मांड चलते हैं, हर एक व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है, वो व्यक्ति एक ग्वाल बाल के हाथों कुश्ती में खेल में हार जाता है और उसको कंधों पर बिठाकर ले जाता है। ये है भगवान की लीला, केवल भक्त ही इसको समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। और आगे चल के क्या हुआ, प्रलंबासुर ने बलराम को दूर ले जाना चाहा। क्यों? क्योंकि प्रलंबासुर को मालूम था कि कृष्ण ने पहले बहुत सारे असुरों का वध किया है, इसलिए संशय था कि कृष्ण के साथ मैं टक्कर लूंगा तो क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन बलराम सही है, बलराम को यह भी उसका जोड़ीदार है, लेकिन शायद कृष्ण जैसी शक्ति इसकी नहीं होगी, पहले बलराम से निपट लेता हूं फिर आगे चल के कृष्ण का देखेंगे। तो वो चाहते थे कि कृष्ण इतना शक्तिशाली है तो कृष्ण से थोड़ा दूर जाना चाहिए, तो बलराम को अपने कंधों पर बिठाकर वो बलराम को दूर ले जाने गए। और उस समय बलराम बड़े सुंदर लग रहे थे, तेजस्वी, उनके शरीर में चंदन का लेप लगाया हुआ था और उनका सुंदर श्वेत रंग का शरीर चमक रहा था, और प्रलंबासुर अंदर ही अंदर से वह खुशी से झूम रहा था कि जैसे एक चोर किसी बहुत अनमोल रत्न को चुरा कर ले जाता है, वैसे ही भी आज मैं सफल हो गया हूं, इस राम को बलराम को मैं कृष्ण से दूर ले गया हूं, अब मैं मेरा आगे का काम करने के लिए तैयार हूं। और फिर क्या हुआ, जैसे अपने कंधों पर ले जाते जाते प्रलंबासुर जा रहा था, उसको कुछ अजीब चीज महसूस हुई। क्या? कि ये जो लड़का मेरे कंधों पर बैठा है भारी होते जा रहा है, भारी होते, अरे क्या बात है, कैसे वजन बढ़ रहा है इसका, वजन बढ़ते गया और इतना बढ़ गया कि बलराम जी का वजन सुमेरु पर्वत जितना हो गया, और वजन इतना दबा रहा था प्रलंबासुर को कि फिर वो अपना ग्वाल बाल का रूप धारण नहीं कर पाया और फिर से उसका असली रूप प्रकट हो गया। आचार्य समझाते हैं कि ये सारे जो असुर थे तो तांत्रिक थे, योगी थे, तो उनके अंदर ये शक्ति थी अपना रूप बदलना, काम रूपिणः, रूप बदल सकते थे, लेकिन जब उनकी शक्ति भगवान के सामने आ जाती और भगवान उन पर दबाव डालते तो फिर वो अपना रूप धारण नहीं कर सकते थे, उसको बनाए नहीं रख सकते थे, फिर अपना जो आदि मूल रूप था उसको धारण करना पड़ता। किसके साथ ऐसे हुआ? पूतना। जब पूतना माता यशोदा के घर में आई तो किस रूप से आई? एक बहुत सुंदर युवती के रूप में आई और मातृभाव लेकर, और इतना माया चला दिया पूतना ने अपना कि सारे गोपियों ने सोचा कि अरे ये सुंदर स्त्री कौन है, कोई देवी है क्या, देवलोक से आई है क्या। किसी के मन में लेश मात्र भी संशय नहीं था पूतना के प्रति, और पूतना किसी को न पूछे केवल ऐसे अच्छे ढंग से हंसे कि सबको मोहित कर दिया, सबको प्रभावित कर दिया और सीधे गए कृष्ण के पास। लेकिन उसका इरादा तो नेक नहीं था। क्या था इरादा? कृष्ण को मारने का। फिर कृष्ण को जब स्तनपान कराया, कृष्ण ने सोचा अरे ये तो मेरी मां की तरह है तो मुझे दूध स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण ने दूध स्वीकार किया, लेकिन साथ साथ कृष्ण ने पूतना का प्राण ही खींच लिया, और प्राण खींचा तो इतना दबाव आ गया, इतना दर्द हो गया पूतना को कि वो अपने सुंदर स्त्री का रूप धारण नहीं कर पाई और जो अपना असली रूप है वो प्रकट हो गया। असली रूप कौन सा था? एक भीषण उग्र क्रूर राक्षसी का। और कितना लंबा था पूतना का शरीर? 8 मील दूर। और वो बाहर गए चिल्लाते चिल्लाते, हे बालक छोड़ो छोड़ो मुझे। लेकिन कृष्ण एक बार किसी को पकड़ते हैं छोड़ते नहीं। इसलिए एक बार कोई भक्ति में आ गया बाहर नहीं जा सकता है। कितना भी कोशिश करे मैं भक्ति छोड़ूंगा, मैं नहीं आऊंगा मंदिर में, मैं भक्तों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे भगवान से भी कुछ लेना देना नहीं है। थोड़े समय के लिए दूर रहेगा, लेकिन जबरदस्ती बाद में भगवान क्या करेंगे, बालों से पकड़ कर उसे ले आएंगे चरण कमलों में। कहां जाते हो? मेरे चरण कमलों में। जो एक बार आता है कभी मेरे चरण कमलों का आश्रय छोड़कर नहीं जा सकता है। आओ मेरे चरणों का स्वाद ले लो, देखो कितना इसमें अमृत है। असुर है आजकल की बलम्बासुर, देखो ऐसा हो आवाज करके आते हैं, बड़े दिखने में भी राक्षस जैसे, बड़े रेलगाड़ी है गड्ढिया है ये। अब इनका कौन वध करेगा? और आजकल के राजाओं ने ही भेजा है ये, कंस ने जैसे भेजे थे वो असुर ना वृंदावन। वो आजकल के नेता लोग सोचते ये प्रगति का निशानी है, बड़े बड़े जितने ऐसे ये करेंगे वो है पूरी शांति भंग कर देते हैं। तो खैर क्या चर्चा हो रही थी? हाँ पूतना। तो एक बार कृष्ण किसी को पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं है। तो पूतना भागती हुई गई बाहर गोचर भूमि में और वहां अपना असली रूप धारण कर दिया पूतना ने। और सारे ब्रजवासी जब आए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान बाल कृष्ण छोटा सा रूप खेल रहा है पूतना के शरीर के ऊपर। तो उसी तरह से प्रलम्बासुर अपने नकली रूप को धारण नहीं कर पाया और फिर अपना असली रूप प्रकट हो गया। कैसा था उसका असली रूप? बहुत भीषण था, इतना विराट शरीर था उसका, तेजस्वी शरीर, काला काला शरीर, और उसके ऊपर बहुत सारे सोने के गहने पहने थे और ऊपर श्वेत रंग के बलराम बैठे थे कंधों के ऊपर। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसे लग रहा था कि कोई बादल है जो कि चांद जिसकी जो छुपा रहा है और उसके बीच में से बिजली चमक रही है। तो प्रलम्बासुर का शरीर उस बादल के समान था, उसके शरीर के ऊपर जो सोने के गहने थे वो उस बिजली की तरह थे, और कृष्ण और बलराम जी जो कि श्वेत रंग के हैं सफेद, वो चांद के समान उस बादल के ऊपर थे। ऐसे काव्यात्मक ढंग से सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन करते हैं। और उस समय बलराम को थोड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर वो तो ग्वाल बाल की लीला कर रहे हैं ना, उनको अचानक आश्चर्य हो गया, अरे ये कौन है बड़ा, इतना बड़ा आदमी, ये कौन आ गया, कहां से असुर ये आ गया? और सोच लगा कि इसका रूप कैसे बदल गया, छोटा बच्चा है ना बलराम, वो लीला कर रहे हैं, तो वो भी सोचा अरे ये तो ऐसे थे वैसे कैसे हो गए, लीला करने लगे। और उस समय बलराम ने देखा कि ये प्रलम्बासुर अब आकाश में उड़ने लगा है, ये सब खेचर है ना आकाश में उड़ सकते हैं। और उसका वर्णन कैसा है, लाल लाल आंखें अग्नि के समान, और बाल भी उस प्रकार से ज्वलित रूप में प्रकट आ रहे हैं, उसके दांत तो मानो नरक के द्वार हैं उसका मुंह, और उसके ब्रिटुल भृगु जो है वो बहुत ऐसे क्रोधित रूप से देख रही थी, और उसको देखकर बलराम जी थोड़े घबरा गए। बलराम जी जो सारे शक्ति के उद्गम है वो घबरा गए। क्यों घबरा गए? आचार्य समझाते हैं कि बलराम भी कृष्ण की तरह भगवान है और वो भी कृष्ण की तरह एक साधारण ग्वाल बाल की लीला कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इस भाव को बनाए रखने के लिए वो घबरा गए। और एक कारण है कि वो घबरा गए, वो ये है कि उन्होंने देखा था कि कृष्ण ने
इस ग्वाल बाल का स्वागत किया था, गले लगाया था, तो बलराम सोचने लगे कि अरे ये अगर कृष्ण का मित्र है और मैंने इसका वध किया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़े घबरा गए, क्या करना चाहिए मुझे। और तीसरी बात, बलराम जी थोड़े चिंतित हो गए कि अब ये असुर मुझे दूर ले गया है, दूसरे ग्वाल बालों से बहुत दूर ले गया है, भंडीरा वन के कोने पर बाहर ले गया है, तो कहीं ये असुरों की चाल तो नहीं, मुझे अलग से ले जाकर अभी दूसरा कोई असुर कृष्ण के ऊपर इसी क्षण आक्रमण कर रहा है तो क्या होगा। ये सारी बातें बलराम के मन में आई। और उस समय फिर एक दो क्षण के बाद बलराम जी का मन स्थिर हो गया, हाँ पता चलिए तो प्रलंबासुर है और ये मुझे मेरा अपहरण करने के लिए आया है। उस समय बलराम ने कहा कृष्ण की ओर, हालांकि कृष्ण काफी दूर थे, हे कृष्ण, हे मनोरम, हे दामोदर, जिस प्रकार से पागलपन एक आदमी के बुद्धि का हरण कर लेता है, उसी प्रकार से ये असुर मेरा अपहरण करना चाहता है। हे रसराज, हे सारे शक्तियों के उद्गम, बताओ मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना चाहिए अभी। तो कृष्ण भगवान ने बलराम की इन बातों को सुनकर आश्चर्य लगा, उनको हंसी आ गई और कहने लगे कि अरे बलराम, ये तो एक असुर है, क्यों तुम खामखा मोह के प्रभाव में पड़ रहे हो, तुम्हारे दिव्य शक्ति का स्मरण करो और तुरंत इसका नाश कर दो। तो बलराम ने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया। और क्या क्या बलराम ने कौन सा अस्त्र धारण किया, अपनी मुट्ठी, मुट्ठी लेकर ठोकर मार दिया उसके सर के ऊपर, प्रलंबासुर के सर के ऊपर। और प्रलंबासुर को वो मुट्ठी कैसे लगी, मानो कि जैसे एक वज्र, जैसे इंद्रदेव वज्र को लेकर पहाड़ को तोड़ते थे और पहाड़ चूर चूर हो जाता है, हालांकि पहाड़ इतना बड़ा है, मजबूत होता है, लेकिन इंद्र के वज्र से, बिजली से बड़े बड़े पहाड़ भी चूर चूर हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से बलराम जी ने मुक्का प्रहार किया एक बार, तो प्रलंबासुर का सर जो है वो फूट गया और बहुत खून बहने लगा उससे। और उस समय ऐसे जब बलराम जी का मुक्का लगा तो प्रलंबासुर का शरीर जो है वो एक बादल के समान लग रहा था, जिसमें खून बह रहा लाल लाल, जैसे कि सूर्यास्त के समय ऐसे लगता है, जब सूर्यास्त होते रहता है तो सूरज का रंग थोड़ा लाल जैसा हो जाता है, और बादल जब उस दिशा में दिखाई पड़ता है तो कैसे दिखता है, प्रलंबासुर का शरीर ऐसे दिख रहा था। अभी प्रलंबासुर बलराम को लेकर आकाश में थे, आकाश में से धीरे 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 नीचे गिरने लगे, पहाड़ के ऊपर गिरे और मर गए वहां पर, और उसका सर जो है वो पूरी तरह से टूट गया। एक भीषण आवाज हो गई क्योंकि प्रलंबासुर का बड़ा शरीर नीचे गिर पड़ा था। और उस समय ब्रजवासी गण ऊपर देख रहे थे, खास करके ग्वाल बाल गण आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है, ये बादल कहां से आ गया, जैसे सूर्यास्त के समय का बादल। और कोई ऐसे ग्वाल बाल सोच लगे कि ये तो ऐसे लग रहा है कि मानो जैसे धीरे धीरे वो गिर रहे हैं तो सूरज विंध्या पर्वत के पीछे से अस्त हो रहा है। विंध्या पर्वत के ऊपर लाल रंग के अशोक फूल बहुत है, तो जब सूरज वहां से अस्त होता है, बादल वहां होते हैं, तो लाल लाल और बादल के बीच दिखता है। तो प्रलंबासुर का रंग थोड़ा काला सा था, सांवला सा था, और शरीर पे बहुत सारा खून लाल रंग का। तो इस प्रकार काव्यात्मक रूप से आचार्यों ने वर्णन किया है कि प्रलंबासुर का पतन होना, नीचे गिरना आकाश से धीरे धीरे कैसे लग रहा था, और ऊपर चांद जैसे सफेद बलराम आराम से बैठे हैं। और ये है प्रलंबासुर का अंत। और उस समय ग्वाल बालों ने बलराम जी की बहुत प्रशंसा की, वाह वाह किया, साधु साधु साधु, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बलराम। और उस समय जो भयानक राक्षस असुर प्रलंबासुर का वध हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, बलराम के हाथों, बलराम जिनके रथ के ऊपर जो ध्वज है उसमें एक ताल वृक्ष की निशानी है, ऐसे बलराम के मुक्का प्रहार से ये भीषण राक्षस खत्म हो गया। उधर देवी देवता भी आए, उन्होंने ऊपर से फूलों की वर्षा करना आरंभ किया और इंद्रदेव ने प्रलंबासुर को एक नाम दिया, बलराम जी को क्षमा कीजिए, और वो नाम दिया प्रलंबाग्न। प्रलंबाग्न, घ्न मतलब नाश करने वाला। इसका और एक अर्थ भी ये होता है हृदय में रहने वाले पापों को नष्ट करने वाला बलराम। इस प्रकार से देवी देवता भी बलराम जी की वंदना करने लगे और उसके बाद बलराम जी कृष्ण और ग्वाल बालों के पास वापस चले गए। सब ने उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया, आलिंगन किया, मानो कि ऐसे कि वो मृत्यु के मुख से लौटकर आया हो। इस प्रकार से बलराम जी की लीला हुई प्रलंबासुर के वध में। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जितने भी सारे असुर हैं जिनका वध कृष्ण और बलराम ने किया, ये सब अनर्थों के प्रतीक हैं जो कि हमारे हृदय में हैं। और ये अनर्थ, इनकी चर्चा हमने संक्षेप में की थी बलराम जयंती के सुबह के दिन, जब हमने धेनुकासुर के बारे में चर्चा की थी। बलराम जी ने ब्रज लीला में इन दो असुरों का वध किया था, धेनुकासुर और प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर कौन से अनर्थ का प्रतीक है? दो अनर्थों का प्रतीक है। एक है पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, ये अनर्थ। और दूसरा लाभ पूजा प्रतिष्ठा, इसके प्रति आकर्षण। लाभ पूजा प्रतिष्ठा मतलब क्या? लाभ मतलब आर्थिक लाभ, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा सुविधाएं चाहिए। पूजा प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान की अपेक्षा, समाज में कि लोग हमारा सम्मान करें, सत्कार करें, हमारे पैर छुएं, हमारा बड़ा नाम हो, हमारे इज्जत हो समाज में, हमारे नाम फोटो अखबार में छपे, यह है लाभ पूजा प्रतिष्ठा। तो ये दो चीजें बद जीव के हृदय में रहती हैं, ये प्रलंबासुर का रूप है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि इन चीजों को हृदय से निकालना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर भक्त बहुत नम्र बने और तीव्रता से बलराम जी को प्रार्थना करें कि जैसे आपने प्रलंबासुर को मुक्का प्रहार से खत्म कर दिया था, उसी प्रकार से ये अनर्थ जो हमारे हृदय में हैं, उनको भी आप खत्म कर दीजिए और मेरा हृदय शुद्ध कर दीजिए, आपके लिए एक पवित्र निवास स्थान बना लीजिए, फिर शीघ्र ही बलराम जी हमारे हृदय में प्रकट होंगे और इन अनर्थ को खत्म कर देंगे। प्रलंबासुर का इतिहास इस प्रकार से बताया जाता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बकासुर नाम का राक्षस भी था ना, आपको याद है ना, कृष्ण भगवान ने उसका वध किया था। बकासुर नाम का राक्षस असुर, वो अपने पूर्व जन्म में सुहोत्र नाम का व्यक्ति था। तो सुहोत्र के भाई का नाम था सुदर्शन, और ये सुदर्शन ने जन्म लिया प्रलंबासुर के रूप में। गर्ग संहिता में बताया जाता है कि ये प्रलंबासुर एक पिछले जन्म में विजय नामक एक गंधर्व राज हुहु का पुत्र था, और कुबेर ने उसको शाप दिया था असुर बनने के लिए, क्योंकि उसने कुबेर के एक उद्यान में से जाकर फूलों को चोरी किया था। इस तरह से यह प्रलंबासुर का रूप धारण करके ब्रज लीला में आया और उसका उद्धार हो गया, क्योंकि स्वयं बलराम के कर कमलों से उसका वध हो गया। इस प्रकार से और एक असुर का वध हुआ, और एक विषय मिला ग्वाल बालों को ब्रज में जाकर चर्चा करने की, और वापस जाके ये कथा और फैल गई कि बलराम जी ने एक महान असुर का, बहुत शक्तिशाली असुर का वध किया, और फिर सारे ब्रजवासी कृष्ण और बलराम का गुणगान करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आज दोपहर को रविवार के फिस्ट क्लास में हम आगे की लीला चर्चा करेंगे, खास करके वो लीला जब कृष्ण भगवान ने दूसरी बार दावनल को पी लिया। पहली अग्नि तो पी ली थी उन्होंने, अब दूसरी अग्नि भी हुई, इससे पहले अग्नि से भी ज्यादा बड़ी, उसको भी भगवान कृष्ण ने कैसे पी लिया, उसकी चर्चा आज दोपहर करेंगे। तो आपके कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी इत्यादि? हरे कृष्ण।
तो जी, भगवान कृष्ण को स्वयं ज्यादा पसंद था या वृंदावन, ऐसा कुछ उल्लेख है क्या?
भगवान कृष्ण को
स्वयं द्वारका ज्यादा पसंद था या वृंदावन की लीला?
भगवान कृष्ण को वृंदावन की लीला ज्यादा पसंद है या द्वारका की लीलाएं, ये प्रश्न है ना? रहना पसंद है, कृष्ण भगवान वृंदावन में ज्यादा रहना पसंद करते थे कि द्वारका में रहना ज्यादा पसंद करते थे, आप बताइए क्यों? क्योंकि वृंदावन का माधुर्य प्रेम निराला है, वृंदावन का माधुर्य प्रेम इसकी तुलना किसी दूसरे प्रेम से नहीं कर सकते हैं, द्वारका के प्रेम से भी नहीं। द्वारका में रहते हुए भी कृष्ण हमेशा वृंदावन में ब्रजवासियों का चिंतन मनन सतत करते रहते, हालांकि द्वारका में भी वो आनंद लेते थे, लेकिन वो थोड़े बहुत ऐश्वर्य भाव में था, प्राय वैकुंठ भाव, राजा महाराजा नौकर चाकर हाथी घोड़े पालकी रथ महल सोना चांदी मुकुट, ये द्वारका का भाव है, द्वारकाधीश वहां कृष्ण राजा है, लेकिन वृंदावन में कृष्ण राजा नहीं है, कृष्ण क्या है? ग्वाल बाल है, एक ग्वाल है, इसलिए कृष्ण को वृंदावन का माधुर्य ज्यादा पसंद है। ठीक है,
नहीं
है कि अगर उनको वृंदावन ज्यादा पसंद था तो फिर वो द्वारका क्यों चले गए? जैसे कि आपको मंदिर ज्यादा पसंद है या घर? आपका जवाब मुझे मालूम है, आप सबका जवाब मुझे मालूम है, आपको मंदिर ज्यादा पसंद है ना? सही है ना? लेकिन फिर भी आप घर क्यों जाते हैं? जाना पड़ता है ना, जाना पड़ता है। उसी प्रकार से कृष्ण भगवान को वृंदावन ज्यादा प्रिय है, लेकिन द्वारका जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वहां की लीलाएं करनी थी, वहां भी बहुत सारे भक्त थे जो उस भाव में उनकी सेवा करना चाहते थे, उनसे उस भाव में प्रेम का आदान प्रदान करना बाकी था अभी तक। तो जब भगवान कृष्ण आते हैं तो कई तरह की लीला करके जाते हैं, अनेक प्रकार के भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करके जाते हैं, जो कि अलग अलग भावों में होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे कृष्ण भक्त केवल ब्रज के भाव में होते हैं, थोड़े मथुरा भाव में होते हैं, थोड़े द्वारका के भाव में होते हैं, थोड़े वैकुंठ के भाव में होते हैं। तो भगवान का उद्देश्य है कि सारे भक्तों को संतुष्ट करना, न केवल ब्रज के भक्तों को। तो ये एक जवाब है। और एक दृष्टि से देखा जाए, वृंदावनम परित्यज्य न पदम एकम गच्छति, भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। तो आपका प्रश्न था कि वृंदावन छोड़कर क्यों गए भगवान द्वारका के लिए? एक दृष्टि से देखा जाए तो वो गए लीला की, लेकिन और एक दृष्टि से देखा जाए तो वो गए ही नहीं, अप्रकट रूप में वो हमेशा थे ब्रजवासियों के हृदय में, और वृंदावन उनसे अभिन्न है, इसलिए कृष्ण भगवान वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जा सकते, अप्रकट रूप में उनकी लीला अभी भी जारी है, हमेशा जारी रहती है। ठीक है, और कोई प्रश्न? प्रश्न का प्रश्न आ गया यहां,
क्योंकि अनिल प्रभु गौशाला ब्रह्मचर्य आश्रम में आते जाते हैं ना, तो उधर जाते हैं इधर का एडजस्टमेंट, उधर जाते उधर का एडजस्टमेंट, इसलिए ये प्रश्न मन में है। प्रश्न ये है कि जब देवी देवता यहां पर आए कृष्ण लीला में भाग लेने के लिए, तो उनका जो डिपार्टमेंट है वो किसने संभाला? उनका काम क्या होता है देवताओं का? ब्रह्मांड को संभालना है ना। कोई वर्षा का विभाग देखता है, कोई सूरज का, कोई अग्नि का, कोई पवन का, कोई इसका उसका, तो वो सब छोड़ छाड़ के इधर आ गए, तो फिर वहां कौन सब, किसने संभाला वो सब? जैसे आप अपने अपना व्यवसाय सब छोड़ के इधर आए, ज्यादा समय इधर रहे, तो प्रश्न वहां आएगा कि अरे फैक्ट्री कौन संभालेगा, दुकान कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा? तो आप कितने समय तक यहां आ सकते हैं? थोड़े समय के लिए। उसी तरह से देवतागण थोड़े समय के लिए यहां पर आए, ज्यादा समय नहीं। आप पूछेंगे थोड़ा समय कहां हुआ, 125 साल कम से कम रहे यहां पर, वो थोड़ा समय होता है क्या? तो इसके जवाब में आप क्या बोलेंगे? हाँ, हमारे लिए 125 साल है, लेकिन उनके लिए बहुत कम समय है। जैसे हमारा एक, हमारे 6 महीने उनका 1 दिन है देवलोक में, तो देखिए कितने दिन वो रहे यहां, बहुत कम दिन रहे वो, और उस समय कोई एडजस्टमेंट हुआ होगा वहां पर, कैसे चला वो चल रहा है, किसी ने डबल डिपार्टमेंट संभाला होगा, किसी ने कुछ किया होगा। जैसे कि जब यमराज को शाप मिला मांडू के मुनि से कि तुम विदुर बन जाओ, तो उस समय भी यमराज के जगह में और एक देवता थे, पितृ थे, जिनका नाम था अर्यमा, तो अर्यमा ने उनके स्थान में काम किया, वो जगह खाली नहीं पड़ी, दूसरे उनके जगह में कोई व्यक्ति आ गया, और फिर जब यमराज वापस आ गए तो फिर वो वापस अपने जगह में चले गए, एक्टिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक्टिंग, ऐसा मतलब उनके जगह में वो रहकर वो कार्य संभालते हैं। ब्रह्मांड का मैनेजमेंट बड़ा परिपूर्ण है, सही ढंग से चलता है। और कोई प्रश्न? हाँ, का प्रभाव क्या कृष्ण भक्तों पे पड़ सकता है क्या? ये हमारे श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। हमारी भक्ति श्रद्धा अगर तीव्र रहेगी तो तांत्रिक की छाया भी छू नहीं सकती है भक्त को। तो प्रभाव, दूसरे प्रभाव की बात तो दूर है। इसलिए हमें श्रद्धा रखनी चाहिए कि एक बार हम कृष्ण के शरण में आए, कृष्ण क्या बताते हैं? डरते रहना, क्या बताते हैं? कभी नहीं डरना, मां शुचः, मैं संरक्षण कर दूंगा। और अगर कोई हमें बताता है कि आपके जीवन में ऐसे तंत्र मंत्र कुछ चल रहा है और हम उससे राहत प्राप्त करने के लिए हम किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, उसके पास, इसके पास जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? श्रद्धा नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं कि ये तांत्रिक जिसके पास हम जाएंगे हमारे समस्या का समाधान करने के लिए, हम सोच रहे हैं कि वो कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली है। ये हुआ ना मतलब? हुआ कि नहीं ऐसा? मतलब इसका मतलब है कि जब हम कृष्ण के शरण में जाते हैं और किसी की परवाह नहीं करने की जरूरत है, बस कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है, किसी की परवाह नहीं करना। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आ जाओ। देवी देवताओं का, तांत्रिकों का, इनका उनका, सबका शरण छोड़ दो, केवल मेरे शरण में आ जाओ। और कोई प्रश्न? में कोई जादू नहीं चलता है तो असुर ऐसे अलग अलग जादू कैसे कर सकते हैं? ये तो कृष्ण की लीला है, ऐसे नहीं होता तो कृष्ण की लीला में क्या मजा आता? तो ये इसलिए चलता है कि कृष्ण की लीला का रस बढ़ाने के लिए। आपको प्रश्न है कि जैसे अनेक जन्मों से हमारी भक्ति की पूंजी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, और जब इतनी बढ़ जाएगी कि हम भगवान के धाम जाने के लिए बस तैयार ही हैं, लेकिन एक जन्म और चाहिए, उसमें जब भगवान अवतार लेकर यहां आते हैं,
पृथ्वी पर, तो उस लीला में भाग लेने को हमको चांस मिलता है, फिर वो लीला में भाग लेकर फिर वापस हम जाते हैं। तो उसी तरह से क्या हमारा द्वेष बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के जब ज्यादा से ज्यादा ज्यादा द्वेष करने लगते, फिर ऐसे कोई असुर का रोल में के हम भगवान की लीला में जा सकते हैं क्या? इरादा क्या है हमको? ऐसे है ईर्ष्या के भावना से हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल प्रेम के रास्ते से जाना चाहिए। और जहां ईर्ष्या होगी वहां क्या होगा? पतन 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 होते जाएगा। भगवत गीता का 16वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे ढंग से भगवान बताते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं कैसे उनकी ईर्ष्या बढ़ते 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 वो नीचे 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 योनियों में जन्म लेते जाते हैं, फिर बिल्कुल जघन्य योनियों में जाते हैं, पतन हो जाता है, नरक योनि में जाते हैं। इसलिए भगवान की लीला में भाग लेना के लेने के लिए ये तरीका नहीं है। और जो भी बड़े बड़े असुर हैं जिन्होंने भाग लिया, विशेष विशेष भगवान की योजना से वो भाग ले पाए, जैसे कि रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, दंतवक्र, शिशुपाल, ये सब कौन है? ये जय विजय है ना, भगवान के धाम के द्वारपाल हैं ये। तो भगवान जब ऐसी लीलाएं करना चाहते हैं तो अपने ही भक्तों को वहां भेजते हैं, या कभी कभी ऐसे कोई विशेष व्यक्ति होते हैं जिनको किसी न किसी योजना से भगवान उनकी लीला में शामिल कराने के लिए कोई व्यवस्था करते हैं। तो ये भी असुर कोई साधारण लोग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने भगवान के धाम में भगवान के साथ लीला करने का उनको मौका मिला, भगवान को उन्होंने आनंद दिया, तो एक विशेष बात है। भगवान को आनंद आया लेकिन उनका उद्देश्य नहीं था भगवान को आनंद देना, इसलिए उनके कार्य को हम भक्ति नहीं कहते। इसे प्रलंबासुर ने बलराम को आनंद दिया, क्योंकि बलराम बहुत खुश हुए प्रलंबासुर को मारने के बाद। इसका मतलब यह नहीं कह सकते कि प्रलंबासुर ने बहुत भक्ति की। भगवान को प्रसन्न करना ये भक्ति हम कहते हैं ना, तो क्या प्रलंबासुर ने भक्ति की बलराम जी की? नहीं। क्यों क्यों नहीं की? द्वेष भावना थी। भक्ति की परिभाषा क्या है? कौन सा श्लोक है? भक्ति अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करना और अन्य अभिलाषाओं से मुक्त होना। तो क्या प्रलंबासुर की भावना अनुकूल थी भगवान की? नहीं, इसलिए उनको भक्ति नहीं कहते। हालांकि उन्होंने आनंद दिया भगवान को, भगवान के लीला का रस बढ़ाया, लेकिन फिर भी प्रलंबासुर की सेवा भक्ति नहीं थी। और कोई प्रश्न? तो आपके कोई प्रश्न है, कोई टीका है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम जी वो भी रासलीला करते हैं, तो वो कौन से ऋतु में करते हैं? थोड़े समय पहले बलराम रास यात्रा, वो भी उत्सव माना जाता है। भगवान भी एक बार आए थे, बलराम जी भी आए थे, और शरद में ही उन्होंने भी उनकी रासलीला की। दशम स्कंद में भी वर्णन आता है, द्वारका से भी एक बार वापस लौट कर आए बलराम जी रासलीला करने के लिए, 2 महीने वहां पर रहे। और कोई प्रश्न?
भगवान अपने अवतार लेते हैं इस धरती पर, तो पूरा उनके एक एक कण, हर एक कण ये करते हैं, हर एक कण उनके साथ में आता है, तो नित्य बद्ध जीव भी उनके साथ आते हैं?
नित्य बद्ध जीव?
हाँ, बद्ध जीव या नित्य सिद्ध जीव उतना ही रहते हैं?
नित्य बद्ध जीव तो हमेशा ये संसार में ही रहते हैं, वो तो भगवान के धाम में तो जा ही नहीं सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को लेकर आते हैं तो उनके थोड़े नित्य सिद्ध जो उनके प्रेमी प्रियकर पार्षद हैं उनको लेकर आते हैं साथ में। माइक सब लोग सुन सकते हैं।
नित्य जो नित्य सिद्ध हो जाते हैं यहाँ से नित्य बद्ध से,
हाँ,
तो वो भी वो लीला में भाग लेते हैं?
जो यहाँ से पहले सिद्ध होकर वापस भगवान के धाम में चले जाते हैं, जब भगवान
या अवतार लेते हैं तो क्या ये जीव भगवान के साथ में आते हैं, ये प्रश्न है। वो भगवान के ऊपर है जिनको वापस ले आना चाहते हैं। अगर उनको ले आएंगे भी वो केवल दूसरों को सिद्ध करने के लिए, केवल उनको असिस्टेंट के रूप में उनको ले आएंगे, सेवक के रूप में। लेकिन किस जीव को भगवान साथ में लाएंगे और नहीं लाएंगे वो भगवान चूज करेंगे। ये है कि द्विज मतलब कोई ब्राह्मण को, महान व्यक्ति को बताया जाता है। तो द्विज पक्षी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि पक्षी तो अपने आप में महान नहीं है। तो आप कोई बता सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी, पक्षी को द्विज क्यों कहा गया है? जो दो बार जन्म लेता है, द्वि और ज। तो ब्राह्मण को द्विज इसलिए बताया जाता है कि संस्कार के बाद जब दीक्षा होती है उसका दूसरा जन्म होता है, तो इसलिए उसको द्विज, ज मतलब जन्म, द्वि मतलब दूसरा। तो द्विज मतलब जिसने दूसरा जन्म लिया है। साधारणतः तो यह ब्राह्मण होता है, लेकिन पक्षी भी दो बार जन्म लेता है, पहली बार अंडे के भीतर और फिर दूसरी बार जब अंडा टूट जाता है उस समय।
कृष्णा,
हरे कृष्ण।
प्रभु जी, वर्षा ऋतु का जो वर्णन है वो मतो भक्त के जीवन में कैसा है, महत्वपूर्ण है कि नहीं?
वर्षा ऋतु, ये कहां के वर्षा ऋतु का वर्णन है? वृंदावन का, इसलिए महत्वपूर्ण है। नहीं तो केवल वर्षा ऋतु का वर्णन करने जाएं तो उसमें कोई ज्यादा आध्यात्मिक लाभ नहीं है। लेकिन ये वर्णन कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। किस जगह का वर्णन कर रहे हैं? वृंदावन का। और इस ये वर्णन को किस से जोड़ रहे हैं? कृष्ण लीला से। और वर्णन करते करते और कितने सारे आध्यात्मिक शिक्षा हमें दे रहे हैं, इसलिए ये वर्णन हम पढ़ते हैं। नहीं तो श्रीमद् भागवत में ऐसे वर्णन का क्या मतलब है? कोई साधारण कोई भौतिक चीज का वर्णन तो श्रीमद् भागवत में नहीं आएगा, ठीक है ना? कल जब हम वर्षा का वर्णन सुन रहे थे तो कितनी सारे आध्यात्मिक तत्व उसमें से निकल आई, बराबर है?
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
प्रभु जी, भगवान की नित्य लीला चलते हैं और भगवान अपने साथ पार्षदों को भी लाते हैं, तो भगवान के लीला में भगवान वीर रस लेने के लिए कई सारे असुरों का रोल अपने नित्य पार्षदों को ही देते हैं। तो जब हम लीला सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसे अलग अलग असुरों के प्रति घृणा आती है, तो क्या इसके कारण हमारे हृदय से या ऐसे कुछ अपराध होता है, क्योंकि वो तो भगवान के बहुत नित्य पार्षद है, नजदीक के है?
वैसे देखा जाए ये असुर भी बहुत विशेष व्यक्ति हैं, चाहे वो भगवान के धाम से आने वाले नित्य पार्षद हों, नित्य सिद्ध हों, या तो फिर इस ब्रह्मांड के कोई जीव जिसके ऊपर भगवान कोई कृपा करना चाहते हैं, जिनको कोई ऋषि मुनियों के शाप के निमित्त से असुर का शरीर मिलता है, फिर वो भगवान के लीला में आते हैं। लेकिन जो भी हों, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला अमर है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त अमर हैं, अमर इस दृष्टि से कि आज तक हम उनकी चर्चा करते रहते हैं। प्रहलाद का नाम आज भी कितने करोड़ों साल बाद हम ले रहे हैं ना, लेकिन साथ साथ प्रहलाद के साथ किसका नाम लेते हैं? हिरण्यकश्यप का नाम भी लेते हैं ना। तो प्रहलाद के साथ साथ हिरण्यकश्यप भी अमर हो गया इस दृष्टि से कि हिरण्यकश्यप का नाम भी गूंजता रहेगा कि हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान ने, और खास हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने यह रूप धारण किया। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो इनकी भूमिका भगवान श्री कृष्ण की लीला में बहुत महत्वपूर्ण है। और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये जय और विजय है, तो जय विजय के रूप में अवश्य हम उनको सम्मान देते हैं, हम उनकी उपासना कभी कर सकते हैं। लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस रूप को उन्होंने धारण किया है, जिन अनर्थों के वो प्रतीक हैं, वो भक्ति के विरुद्ध हैं। इसलिए अंदर से हम जान सकते हैं कि ये वास्तव में मूल रूप में भगवान के भक्त हैं उनके धाम में, लेकिन अभी उन्होंने एक रूप धारण किया है जो कि विष के समान है। तो ज्यादा से हम उस विष को या उस पाप को पाप से घृणा करते हैं, व्यक्ति से नहीं। जिस पाप का प्रतीक हिरण्यकश्यप है उससे हम घृणा करते हैं, क्योंकि अंत में हर एक व्यक्ति को, जितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो, जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर भगवान चाहे तो उसको शुद्ध कर देते हैं। और खास करके जो असुर हैं उनका वध करके तो उनको मुक्ति मिल जाती है। थोड़े असुर उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, निराकार में लीन हो जाते हैं, और थोड़े असुर हैं जिनको उनके धाम की प्राप्ति होती है। जैसे पूतना को एक धात्री का स्थान मिल गया, तो यह है भगवान की कृपा। तो इसलिए हमें घृणा करनी चाहिए उस तत्व से या उस पाप से जिनके प्रतीक ये असुर है। और कोई बात आपको, प्रत्येक संसार के असुर हैं उनके बारे में क्या समझा जाए? ये तो केवल असुर ही है, क्योंकि इनका कोई भगवान या भगवान की लीला से कोई संबंध नहीं है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 16वें अध्याय में वर्णन किया है, वैसे ही उनके साथ होगा। भगवान ने बताया ना कि वो नीचे से नीचे योनि में जाते जाएंगे, उग्र कर्म करेंगे, तो वैसे ही वर्णन उनका है। लेकिन कोई कितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो, ये संभव है कि वो भी किसी न किसी दिन, किसी न किसी जन्म में भगवान के शरण में आ सकता है। आखिर कितने बड़े पापी से पापी लोग कृष्ण के भक्त बन गए, जगाए मधाई बन गए ना कृष्ण के भक्त, तो जगाए मधाई बन सकते हैं। तो ये आजकल के फिर छोटे मोटे असुर क्यों नहीं बन सकते? अगर भगवान के भक्तों की कृपा उनके ऊपर हुई तो अवश्य वो भी भक्त बन सकते हैं। हरे कृष्ण।
मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि आज भी जो वृंदावन के जो लोग हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि जिनके बहुत ही पुण्य होते हैं वही वृंदावन में जन्म लेते हैं, और इस जन्म के बाद वो आध्यात्मिक धाम में चले जाएंगे, तो ये सच है? और ऐसा है तो फिर जो अन्य भारत में या जो वृंदावन में नहीं रहते हैं और अन्य जो विविध भागों में रहते हैं, तो उनका उनकी आध्यात्मिक प्रगति कैसी हो जाएगी?
वृंदावन में कौन जन्म ले सकता है? जिसने पूर्व जन्मों में बहुत भगवान श्री कृष्ण की सेवा की हो वही लोग जन्म ले सकते हैं। कृष्ण भक्त के अलावा और कोई वृंदावन धाम में जन्म नहीं ले सकता। अगर भी इस जन्म में आकर वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के विरुद्ध कुछ करे या ऐसे हमें प्रतीत हो, दिखाई पड़े, फिर भी वो हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, वो कृष्ण और उनके बीच की बात है। और अगर वो व्यक्ति सही ढंग से अपनी सेवा करता है भगवान की, तो भगवान उसको लेकर जाएंगे अपने धाम मृत्यु के बाद। और अगर वो व्यक्ति बहुत पापी निकल आता है, बहुत अपराध करता है धाम के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति इत्यादि, तो भगवान अगर चाहे तो एक और जीवन उसे ब्रज में जन्म दे सकते हैं, किसी नीच योनि में, और वहां से जो भी उसने अपराध किए हैं वो कष्ट भुगत कर उनसे उसको शुद्ध करा सकते हैं, और उसके बाद फिर उनको वापस उनके धाम ले जा सकते हैं। तो ये ब्रजवासियों की गति है। और जहां तक भारतवर्ष में अन्य भागों में जन्म लेने वाले जो लोग हैं, उनको अपने अपने कर्म के अनुसार फल मिलेगा। भक्ति करने वाला जो भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ब्रह्मांड में कहीं भी क्यों ना हो, उसको कोई जगह से संबंध नहीं है। चाहे वो वृंदावन में रहे, चाहे उसका शरीर वृंदावन में रहे या न रहे, अगर उसका मन वृंदावन है, अगर उसका हृदय वृंदावन है, तो उसको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है कि हम तो वृंदावन में नहीं रहते, हम तो बेलगाम में रहते हैं, हम कैसे कृष्ण के पास जा सकते हैं। हाँ, हमारे हृदय वृंदावन बनाने से, हृदय को वृंदावन कैसे बना सकते हैं? कृष्ण का सतत स्मरण, कीर्तन, चिंतन, मनन करने से, फिर हम भी गोलोक वृंदावन वापस जा सकते हैं इसी जीवन के अंत में। और ज्यादा हमें इंतजार नहीं करना है, अगला जन्म लेंगे तब तक कलयुग की हालत क्या हो जाएगी कौन जाने। इसलिए हमें ठान लेना चाहिए कि इसी जीवन के अंत में हमें गोलोक वृंदावन जाना है, मृत्यु के पहले हमें शुद्ध भक्त बनना है। अगर हो गए अच्छी बात है, नहीं हो गए फिर भी निराशा नहीं, भगवान कुछ अगला जन्म देंगे जहां कुछ चांस देंगे हमें भक्ति करने के लिए। लेकिन हमने उसके लिए इंतजार नहीं करना है। जैसे विद्यार्थी उसको एटीकेटी मिल सकता है, एटीकेटी बोलते हैं इधर, मतलब एक पेपर में फेल हो जाएगा, उसको अगले साल में प्रमोशन मिल सकता है, फिर उसको जो बैकलॉग है दो पेपर एक पेपर बाकी है वो फिर दे सकता है। लेकिन विद्यार्थी को इस बेस इसको आधार बनाकर चलना नहीं चाहिए कि चलो ये है हम थोड़ा ढीले बन जाएंगे। उसको ऐसे तैयारी करनी है जैसे पहली बार परीक्षा देते ही वो सारे पेपर पास हो जाए और दूसरी कक्षा में चले जाए। ठीक उसी तरह से हालांकि जिस भक्त ने भक्ति की है अगले जन्म में भी भगवान उसे भक्ति करने के लिए संधि देंगे, लेकिन हमें इस पर निर्भर नहीं रहना है। हमें तो समझना चाहिए कि एक जन्म है, इसमें ही हमें खत्म करना है ये संसार को, और नहीं आना है वापस। बहुत दुख है यहाँ पर, फिर से दोबारा आओ माँ के पेट में आओ, फिर से 9 महीने रहो, फिर से ABCD चालू करो, फिर से स्कूल में जाओ, कितना तकलीफ, फिर से बीमारी, बुढ़ापा, मरण। इसलिए अच्छी तरह से अपने को समझ लेना चाहिए कि ये संसार दुख का सागर है, वापस नहीं आना है, इसी जीवन में जाना। तो फिर भारतवर्ष तो क्या, अगर हम किसी भी देश में क्यों ना हो, हम उसी स्थान पर जा सकते हैं जहां ब्रजवासी जाएंगे। प्रश्न है कि गोलक वृंदावन को वापस जाने की बात जब आती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयम्। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए जन्म जन्मांतर। मतलब भक्त ये भी नहीं मांगता कि मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, वो अगर यहां भी रहने के लिए तैयार है अगर भगवान चाहे तो, सही बात है। लेकिन भगवान क्या चाहेंगे, भगवान चाहते हैं कि इसको वापस ले जाएं। और अगर भक्त जो कि शुद्ध हो गया है अगर वो गोलोक वृंदावन जाने की इच्छा भी रखता है तो ये कोई गलत इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां जाकर भी वो भगवान की सेवा ही तो करेगा, सेवा के लिए ही तो वो गोलोक वृंदावन को चाहता है, केवल अपने आराम के लिए नहीं चाहता। लेकिन फिर भी ये सही है कि भक्त की भावना यही रहती है कि जहां भगवान मुझे ले जाना चाहें हम वहां जाएंगे, हम केवल भगवान की सेवा में रहना चाहते हैं। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं अपने भक्तों के ऊपर कि अवश्य अपने भक्तों को भौतिक ब्रह्मांड में न रखते हुए उनको वापस ले जाते हैं। और कहीं की जाए, श्री कृष्ण लीला की जाए, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय।